गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
हजरत मोहम्मद जी कह रहे हैं कि एक दिन जबरील देवता आया और मुझे एक गधे से थोड़े बड़े जानवर पर बैठा कर ले गया बुराक पर। और वहां कौन देखा, वहीं पर मूसा जी देखे, ईसा जी देखे। वो कौन था? पुणात्मा, वो पितर लोक है, वहां वो स्वर्ग लोक है। एक तरफ नरक है उसी स्वर्ग में, एक तरफ स्वर्ग है और उसके अन्य स्थानों पर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा पितृ लोक है जहां पर सभी ये पितृ और भूत प्रेत बने हुए ऊपर वहां रह रहे हैं। पितृ तो वहां ऊपर रह जाते हैं, भूत या धक्के खाते रहते हैं। पितृ वो पुण्यात्मा बनती है जो कभी शास्त्र साधक थे और फिर मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, अगले जन्म में उन्होंने सत साधना मिली नहीं और अपनी पुण्य कमाई से वो वैसे प्रभु तो प्राप्त हो, प्रभुता को तो प्राप्त हो गए, लेकिन अलग फिर से चार धरना लगने से, फिर से भक्ति सत न होने से वो पितृ बन गए। अब वहां सारे वहां मिले उसको। देखिएगा, ये देखिएगा पृष्ठ 164 पर, प्यारे नबी अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे अल्लाह ने उनको जो बड़ी बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र करने लगे। बैतुल मरकदस से आकाश पर जाने का हाल भी सुनाया। वहां कुदरत ने जो जलवे देखे उनको भी बयान किया। आप हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि इस तरह हजरत जबरील मुझे पहले आकाश पर ले गया। वहां इंसानों के बाप हजरत आदम मिले। उनका हाल यह था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते और हंसने लगते और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद कर्म थे और बाईं ओर बद के। हजरत आदम अलैहि के ने आप सलहल यानी हजरत मोहम्मद को देखा तो बोले, तुम्हारा आना मुबारक है, हे नेक नबी, हे नेक बेटे। आप हजरत मोहम्मद ने पूछा, जबरील ये कौन है? उस देवता ने जवाब दिया, जबरील ने, यह आदम अलही है सारे इंसानों के बाप। फिर जबरील अलही आपको दूसरे आकाश पर ले गया, फिर तीसरे पर, इसी तरह आगे बढ़ते गए। आप जिस नबी के पास से गुजरते वे मनमोहक शब्द कानों में गूंजते, तुम्हारा आना मुबारक है, हे नेक नबी, हे नेक भाई। इसी तरह आपने सातवें आकाश पर पहुंच गए। वहां इस तरह आप सलल यानी हजरत मोहम्मद सातवें आकाश पर पहुंच गए। वहां हजरत इब्राहिम अलैहि मिले, तीसरे देखते ही बोले, तुम्हारा आना मुबारक हो, नेक नबी, हे नेक बेटे। आप आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही गए, रस्ते में सौंदर्य के रूप भी देखे और प्रकोप के दृश्य भी, हजारों फरिश्ते भी नजर आए जो सजदे में पड़े हुए रब का गुणगान करते थे। बढ़ते बढ़ते आप अल्लाह के सिंहासन के करीब पहुंच गए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद पर और आप की उम्मत पर 5 नमाजें फर्ज हुई, 50 नमाजें फर्ज हुई। आप वापस हुए तो हजरत मूसा जी के पास से गुजर हुआ, कहिए क्या फर्ज हुआ उम्मत पर। उन्होंने देखते ही पूछा, हजरत सलल यानी मोहम्मद जी बोले 50 नमाजें मुझे कही गई। मूसा ने कहा लौट कर जाइए, रब से कमी करने की दरखास्त कीजिए। फिर कम कर 5 नमाज हैं, ये 5 रह गई। अपनात्माओं, एक 161 प्रश्न पर देखना, जो दास बताना चाहता था वो पूरा हो जाएगा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद, आज रात बुराक नामक एक जानवर आया, उस पर बैठकर मैंने बैताल मरकादस की सैर की। वहां पहुंचा तो नबियों की जमात देख आई, उनमें अब्राहिम भी थे, मूसा और ईसा भी थे, मैंने उन सबको नमाज भी पढ़ाई। अब देखो हजरत मोहम्मद जी क्या बता रहे हैं कि वहां मैंने ईसा जी को भी देखा, मूसा जी को देखा, अब्राहिम को देखा, जो इनके यहां बहुत अच्छे नबी हुए हैं, और कहता मैंने उनको नमाज पढ़ाई। अब ये दास के बताना चाहता था कि बाबा आदम जी को हजरत मुसलमान भाई भी और ईसाई भाई भी अपना सुप्रीम मानते हैं, और वो जो महान आत्मा जिसको मानते हैं वो स्वर्ग में पहुंचा, उस पितृलोक में पहुंचा। और एक तरफ कहता है वह क्या, जब दाई तरफ देखता है तो हंसता है, क्योंकि स्वर्ग के अंदर उसकी जो पुण्य आत्मा संतान थी वो बड़ी आनंद से रह रही थी, और जो दूसरी संतान थी वो निकम्मी, वो नरक में तंग पा रही थी, उनको देखकर रोए था, उधर देख कर हंसे था। तो जब जिस स्थान पर जाकर भी चैन नहीं उस महापुरुष को, तो ऐसी साधना करने से लाभ क्या होगा। हजरत आदम जी के 2 संतान हुई थी, एक हाबिल और एक कायन और हाबिल। उन दोनों ने आपसी द्वेष हुआ और बड़े भाई ने छोटे को मार दिया, और बड़े को हजरत मोहम्मद में प्रवेश फरिश्ते ने, जिसको भगवान कहे थे अल्लाह ने, उसको श्राप दे दिया कि तू यहां से भटकता फिर। अब शुरुआत से दुख, और वहां जहां ये साधना से जहां पहुंचे वहां भी दुखी वो महान आत्मा हजरत आदम, तो अन्य अनुयायी कैसे सुख होंगे उस साधना से। परमात्मा ने वो तरले बासन पर मारी, नीचे वाले पर। अब यही कारण था कि परमात्मा के विरोधी बन गए। अब क्या बताते थे, परमात्मा ने कहा कि वो साधना करो जिससे तुम्हारे पाप ना बने और पूर्ण मोक्ष हो, वो बाखबर मैं आया हूं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, जो तुम्हारी कुरान शरीफ के अंदर तुम्हारा अल्लाह कह रहा है कि उस परमात्मा की खबर बाखबर से पूछो, वो बाखबर मैं हूं, और मैं ही वो अल्लाहु अकबर हूं, वो बड़ा भगवान मैं ही हूं, मैं अल्लाह कबीर मैं ही हूं। अब ये बात कह दे तो भाई कर्जा पाट जा। अब सिकंदर लो दीता चस्का नहीं बोला नहीं तो नो बैठा कह जी, क्यों उसके सामने तो ऐसे अनहोनी कर रखी, लेकिन वो शेख फरीद के तेल जैसे छींटे लगे वो अंदर ही फूल रहा था, और परमात्मा वहां बैठे हजारों की संख्या में सत्संग सुना रहे थे हिंदू और मुसलमानों को। ऐसी बैत पढ़ो रे भाई, उल्ट वजूद अजूद अकल घर जाई। ओह अकल घर, उस घर पहुंच जाएंगे जहां जाने से कभी फिर जन्म नहीं होगा, कभी कष्ट नहीं होगा, सदा सुखी रहेंगे। तुम ऐसी साधना करो मेरे भाई। कलमा पाक प्याली नूरी, प्याला नूरी कर पांचो बिस्मुल बेग सबूरी। काफिर कुफर करे बद फैला, इस खाने से हो मन मैला। आए है। तो बद फैल करते हो, मांस काटते हो, गाय काटते हो हैं, और बकरे काटते हो। हजरत मोहम्मद जी ने तो बकरा शब्द से मारकर जीवित कर दिया था, हजरत मोहम्मद जी ने गाय को शब्द से वचन से मारकर जीवित कर दी थी। तुम करके दिखाओ। एक समय एक गुरु चेला चले जा रहे थे। गुरुजी बोला भाई चले तू मेरे ते एक स्टेशन पाछ रहिए और जहां मैं रुकूं वहीं तू रुकना, जहां मैं खाना खाऊं उसी होटल पर या घर में तू खाना खाना। रास्ता तय हो गया, इन गांवों से गुजरते हुए हम चलेंगे। चेला उस रात को पिछले स्टेशन पर ठहरे, गुरुजी अगले स्टेशन पर पूरा निर्धारित थे। एक स्टेशन पर वो गुरुजी रुके, होटल पर खाना खाने लगे। उसने पूछा भाई सब्जी क्या की है, रोटी क्या बना रखी है। होटल वाला बोला भाई मांडे संडे महात्मा जी, मांडे संडे। महात्मा बोला लिया भाई मांडे संडे लिया था। उसने रोटी मांडे रोटियों को बोलते हैं, सांडा एक नेवले जैसा प्राणी होता है उसकी सब्जी बना रखी थी। महात्मा को ज्ञान नहीं था, उसने वो मांडे और संडे खा लिए चला गया। और पीछे वो चेला आया, चेला भी उसी होटल पर रुक गया और वहीं खाना खाया, क्यों पता कर गया गुरुजी कहां कहां खाना खाया। होटल वाले बोले से पूछा भी रोटी क्या किया भाई मंडे और संडे। अब चेला बोला मेरे गुरुजी ने क्या खाया भाई, अब ये मंडे संडे खाए। अब नहीं हमारे गुरुजी तो मांस नहीं खाते कि ना भाई खाए। वो बोला ला भाई मैं भी खा लेता हूं फिर तो। अब वहां जाकर के गुरु चेला जब इकट्ठे हुए कहने लगे बेटा तेने उस होटल पर क्या खाया। उस गुरुजी को पाछे पता चल गया भाई वो तो मंडे संडे थे। उसको पता लग गया चेले को कि तो भाई मांस है। तो बोला जी आपने मंडे संडे खाए, मन भी मंडे संडे खा लिए। तो गुरुजी बोला निकम में मन तो बेरा नहीं था, ये संडे के अमन सोचा को सब्जी होगी और तेरे को पता था तने क्यों खाया। उन्होंने बोला जी मेरा भी जी कर गया, आपने कहा भी मैं जो खाना खाऊं वहां खाइए, मैंने ये थोड़ा कहा था मैं जहां खाना खाऊं वहां खाइए लेकिन जो खाऊं वो मत खाइए, थोड़ा है मुझे मेरे से गलती होगी तो मुझे पाप नहीं, तने जानबूझ के खाया तुझे पाप है और तू चल मैंने खा लिया। क्या करा शिष्य गुरु ने ऐसे करके एक संडा दो संडे की सब्जी खाई थी, ऐसे करके बाहर निकाल दिया और सांडा जीवित करके भेज दिया, दूसरा फिर नुकाट दिया, वो दोनों चले गए। बोले तू कर जीवित, नहीं कर सकता। तो कहने का भाव ये है कि जैसे हजरत मोहम्मद जी ने कहता फिर तुम्हें खाने का भी अधिकार नहीं था। अब कहने का भाव ये है कि हजरत मोहम्मद जी ने वो गऊ मार दी जीवित कर दी और बकरा काट दिया जीवित कर दिया और तुम ड्रामा करते हो एक यादगार बनाए रखने के लिए। अब तुमने वो एक अलग से कहानी बना ली। ऐसी बैत पढ़ो रे भाई, अकल उलट अजूद अकल घर जाई ही। काफिर कुफर करें बद फैला, इस खाने से हो मन मैला। अब मांस खाओगे तो निर्दयी बन जाओगे, काटोगे बकरे को या गाय को चाहे आप किसी तरह भी काटो, वह तड़फ तो रही है। अब आपका गल को काटने लगे कहते हैं कि हम तो हलाल करते हैं, कलमा बोल बोल के धीरे धीरे प्यार से मारते हैं। अल्लाह तेरे को मारे प्यार से सिकंदर। ओ परमात्मा बोले कबीर जी अगला पीर जी तेरी गर्दन काटा खती, यो कलमा पढ़ के प्यारते आ बैठ उल्टा सर कहने को क्यों बकवाद करता है। अरे अपनी जान दा जब तो बकवाद और दूसरे जीव को तुम मार रहे हो तो इससे कहते तुम भक्त नहीं रहोगे, निर्दयी बन जाओगे। काफर कुफर करें बद फैला, इस काने से हो मन मैला। क्या बताते हैं नाथे हिंद मुसलमाना, राम रही न दुआ सलामा। जो चेते तिस भिस्त पठावा, बिस्मिल को दो जिख लावा। होते नबी मोहम्मद पीरा, जाको मुर्शिद मिले कबीरा। कबीर आदनी गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि होते नबी मोहम्मद पीरा जिनको मुर्शद मिले कबीरा। शंकर दीप में आन चिताया शब्द मैल का भेद लखाया। कौन मोहम्मद मजहब तेरा रब की रूना की जहेरा। अब काजी मुल्लाओं को परमात्मा बता रहे हैं ये जो ब्रू तुम भिष्ट पठाई तो तदबीर करो कबीला भाई। अब कभी क्या कहता वो हजरत वो पीर जी क्या कह रहे थे शेख तकी कि हम तो इस बकरे को और गाय की रूह को हलाल करके बिस्मल करके स्वर्ग भेज देते। परमात्मा कहते हैं अगर तुम्हारे कलमा पढ़ने से और ऐसे गर्दन हलाल करने से परमात्मा प्राप्ति हो तो पशुओं का नंबर कोई नहीं आन दे। पहले तो जैसे कोई प्लाट मिलते हो और क्यों अधिकारी हो पहले तो अपने रिश्तेदार देगा आ जा फटाफट ले वो कौन बकरा नंबर आन दे। तो ऐसे ही यदि ये तुम्हारी छोरी सही हो कि ऐसा करने से ये रूह यानी आत्मा बकरे और गाय की स्वर्ग चली गई तो तुम अपने परिवार के किसी सदस्य को और या अपने को ऐसा करके दिखा दो हम मान जाएंगे ये तुम्हारी थ्योरी सही है। जो ये रूते भिस्त पठाई तो कर तदबीर कभी लाभ आई। देखा देखी कर्द चलावो ऐसी दुविधा मन में लाओ। कैसा दीन चलाया भाई सकल रू का दर ठकुराई। उसका दर की रू ना पेखी पकड़ पछाड़ी कदर करद गल छेकी। अब परमात्मा ने उनको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया और क्या बताया ये बिस्मल कित से आई काजी बिस्मल कित से आई। भाई तत बोलो राम खुदाई। जा ममड़ी का दूध पीवत हो दही घरत बहु खाई। जाको फिर तुम हलाल करत हो लेकर करद कसाई। जिस माँ का गाय का तुमने दूध पिया और खूब घी और मलाई खाई और फिर उस माँ को तुम कत्ल करत हो लेकर करद कसाई। हक हक कर मुल्ला बोले मस्जिद बंग सुनाई। और 300 रोजे खून करत हो खोज न पाया राई। सूर गऊ की एक कै माटी आत्म रूप इलाही। दास गरीब एक वो साहेब जिन ये उमत उपाई। वो केवल एक ही परमात्मा सबका है और वही पूर्ण भगवान है उसी की पूजा से तुम्हारा मोक्ष होगा। दिल ही अंदर हुजरा काजी दिल ही अंदर हुजरा। कर ले उस साहेब से मुजरा उस साहेब से मुजरा कर जिसमें कुरान शरीफ के का ज्ञान दाता अल्लाह भी कह रहा है कि वो परमात्मा तो 7 दिन में सृष्टि रच कर तख्त पर जा बैठा उसकी खबर किसी बा खबर से पूछ ले। कहते हैं उस साहेब का मुजरा करो जो तुम्हारी कुरान शरीफ में संकेत है। तुम कुरान शरीफ का आदेश भी पालन नहीं कर रहे हो। सत्र काबे देख नूर के खोल केवाड़ी झांकी। ता पर एक गुमज है गैब जा पंथ डगरिया बाकी। हक हक कर मुल्ला बोले काजी पढ़े कुराना। जिनको कहां दीदार जो काटे गला बिराना। होई होई उनको भगवान कहां दर्शन देगा जो दूसरे का गल काटते हैं। हक हक कर मुल्ला बोले काजी पढ़े कुराना। और जिनको कहां दीदार जिनको ओ दीदार कहां जो काटे गला बिराना। अरस कुरस पर अलह तकत है खालिक बिन नहीं खाली, वे पैगंबर पाक पुरस्ते साहिब के अब्दाली। मोहम्मद को नहीं गोसत खाया गऊ न बिस्मल कीती, एक बार कहा नबी मोहम्मद ता पर एती बीती। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 180,000 को सौगद जिन नहीं कर चलाया। वे ही मोहम्मद वे ही महादेव वही आदम वो ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कौन है देख अपने घर में। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि जो हजरत मोहम्मद जी थे ये शंकर जी के उपासक थे पहले, और जैसे आपने गीता जी में सुना है कि जो पहले जन्म में जो जैसा साधक था शास्त्र विरुद्ध, वो वर्तमान में भी वो उसी तरह का साधक होता है। शंकर जी की उपासना करते थे, ये शंकर के कोई गण थे, और फिर ये नीचे आए तो फिर भी वही कसक इनके अंदर थी, प्रभु की चाह थी, तो काल के दो तीन फरिश्तों ने उनको गुमराह कर दिया। परमात्मा खुद कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा के पास आए, इनको सतमार्ग समझाया, सतलोक भी दिखाया, पर नीचे इनके बहुत से शिष्य बन गए थे, वह पर बूता ना छूटी, और उधर से जबरील देवता का वो डर कहीं हो फिर न टीटवी दाव दे। इस कारण से अपरमात्मा क्या कहते हैं, अगर तुम साधक हो अपने शरीर में देखो, ये हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई का एक जैसा है, और सभी में कमल बने हुए हैं, कमल बने हुए हैं, इनको हम मंत्र देंगे जाप करो, इनमें देखना चाहते हो आप देख भी सकते हो। क्या है कि हजरत आदम जी ब्रह्मा जी के अवतार थे, वो ब्रह्मा जी के उपासक थे, ब्रह्मा जी के लोक से आए थे, वो पुण्य आत्मा थी, पिछले जन्मों के संस्कार उनके भक्ति युक्त थे, लेकिन भविष्य की साधना उनकी ठीक नहीं बनी। क्या कहते हैं, वही मोहम्मद वही महादेव और वही आदम वो ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा नहीं तो देख अपने घर में, इस शरीर के अंदर देख जहां कर तुझे पता चलेगा, क्योंकि हमारे शरीर में ये कमल बने हुए हैं, जैसे टीवी के ऊपर चैनल होते हैं, यदि आपका टीवी ओके है और पावर से जुड़ा हुआ है और ऊपर से कनेक्शन आपने ले रखा है, तो टीवी ऑन करते चैनल आप लगाओगे तो उस चैनल पर का प्रोग्राम आपको स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा। यदि तुम चाहते हो इसका निर्णय करना तो आप देखो अपने शरीर में, आपको स्पष्ट दिखाई देगा हजरत मोहम्मद कहाँ है और आदम जी कहाँ है, वो क्या कर रही है, वो मोक्ष है या नहीं है। आप वो पीर जी तो नहीं मानने वाला था, कहता अच्छा तू ही है वो बा खबर, तू ही है अल्लाह, देख ले राजन, आप भी इसकी बातों को सुन रहे हो, आप भी इसकी बात को स्वीकृति कर रहे हो, और कर ली लाल आंख। सिकंदर लो दीवी जान गया कि बात बिगाड़े तेगा, वो कहने लगा पीर जी बात सुनो, आप मेरे सिर माथे हो, क्योंकि आप हमारे आदरणीय और पूरे समाज के पीर हो गुरु हो, लेकिन जो मेरे साथ इस परमात्मा ने किया है मैं भूल नहीं सकता इसको, और मैं इसको वहां ले जाऊंगा दिल्ली में इन महापुरुष को, और सबको ये तत्व ज्ञान सुनवाऊंगा और सब एक हो जाएंगे। अब शेख तकी तो अंदर ही अंदर लग गया, फिर अपने ताना बाणा अब जाल पूरने षड्यंत्र रचने की तैयारी करने कि अब तेरी रोजी रोटी गई। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, ये मान बढ़ाई ईर्षा वह दुर्लभ तजना, ये राज तजना भी आसान है, स्त्री को त्याग कर जंगल में बैठ जाना भी आसान है, लेकिन राग द्वेष और ये ईर्षा ये नहीं मिटी तो मोक्ष नहीं है, चाहे तो कितना जाले, इसको घर न रह के खत्म कर, और ते जंगल में साधना वही करनी पड़ेगी जो हमने बताई है। तो इस प्रकार पीर जी ने भविष्य के षड्यंत्र की स्कीम तैयार की, और सिकंदर लोदी परमात्मा को हाथी पर बैठाकर अपने वाली अंबारी में अपने वाले सिंहासन पर हाथी के ऊपर बैठा करके और दिल्ली की तरफ अंग रक्षकों के साथ चल पड़े। बोलो सतगुरुदेव। कर जोरू विनती करू दरों चरण पर शीश गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोवा जाऊं मैं तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं जो रखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोय चरणों ऊपर शीस रखूं कहूं जो कड़ी हो गुरु जी कबीर गुरु जी मिल लेंगे पूछेंगे कुसलात आद अंत की सब कहूं अपने दिल की बात गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाई तुमरे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं शिव विरंच मुनि नारदा तिनके हरदन समा अब गुण किए तो बोध किए करत न मानी हार बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन तारे अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता कुलाजे मैं अपराधी जन्म का नक्षक भरे विकार तुम दाता दुख भंजना मेरी करो सुमर परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर सर्व सृष्टि रचनहार है और वो पूर्ण विश्व के पूरे ब्रह्मांडों के वो कुल मालिक है। हम सभी आत्मा सतलोक में रहते थे। सतलोक वो स्थान है जहां न जन्म होता है न मृत्यु होती है। जो जहां बार बार न जन्म होता है न मृत्यु होती है वहां शरीर पांच तत्वों से बना हुआ नहीं है। वहां जो शरीर हमें मिलता है वो नूरी तत्वों से बनता है तेज तत्वों से। और वहां पर कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं, सतलोक के अंदर कोई काम नहीं, वहां पर प्रत्येक सुविधाएं, फल फ्रूट, हर प्रकार के पदार्थ परमात्मा की तरफ से सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार वहां पर बाग हैं, सदाबहार नदियां हैं, हर प्रकार के पदार्थ वहां पर उपलब्ध हैं। जैसे हम यहां पर सुख खोजते हैं, छुट्टियां लेते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, कहां जाते हैं, किसी स्थान पर पहुंच जाते हैं, किसी तीर्थ पर जाते हैं और वहां किराए पर कमरा मोल लेते हैं, इधर उधर की वस्तुओं को देखते रहते हैं, बड़ा आनंद आता है। कोई काम नहीं करना होता, बनी बनाई रोटी होटल में मिल जाती है और बिछे बिछाए बेड मिल जाते हैं, बड़ा आनंद आता है, बहुत खुशी होती है। फिर हम घर पर आते हैं तो वही झंझट, फिर सब कार्य करना पड़ता है। तो जो हम वो समय वहां बिताकर आए हैं वो कितना अच्छा लगे, आपने काम तो करना नहीं था और दृश्य बहुत ही धुधुर के देखे, कभी झरने देखे, कभी पहाड़ देखे, कभी बाग में घूमे, कभी वृक्ष के नीचे बैठ के ठंडी ठंडी हवा चले, कभी कोका कोला पिया है, कभी कुछ पिया, कभी को फल खा रहे हैं, कितना अंगूर खा रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। लेकिन सिर में दर्द तो यू काम करे है, जिस जहां करके हम फिर किधर नौकरी करते हैं, वो अफसरा की डांट, घर आते हैं को सास की डांट, सुसरे की या सासु सुसरे न बहू की, बेटियां की बिरयान मैटी, फिर कोई रोगी है, कोई कोडी है, किसी के और 36 प्रकार के इंजेक्शन लगे रहते हैं, कोई बालक ब्याह का योग्य हो गया, ब्याह शादी का जुगाड़ जुड़ा नहीं, पहले तो रिश्ता होता नहीं, रिश्ता हो जाता है तो फिर पैसे का व्यवत नहीं, उसके लिए समस्याएं। तो ऐसे हम यहां पर कितने दुखी रहते हैं। सतलोक के अंदर ऐसा है जैसे आप यहां सतलोक आश्रम बरवाला और क्रोथाम आते रहते हो, यहां आने के बाद आपको कोई काम नहीं। अब यहां आप आते हो, ठीक है, कुछ भक्त सेवा भी कर रहे हैं, बाकी 90% बिछे बिछाए मैट मिले है, सर्दी है तो इतनी बढ़िया ताजी रजाई बनवा रखी है, नीचे गद्दले है, गद्दे बिछा करके और अपना खाना खाया, भोजन पाया, फिर उसके बाद परमात्मा की भक्ति चर्चा आराम से करते रहते हो। ऐसे हमें अगर एक वर्ष रहना पड़ जाए, दो वर्ष रहना पड़ जाए, क्या दिक्कत है, आनंद ही आनंद है। तो ऐसे ही हम सतलोक में रहते हैं, वहां पर परमात्मा का सब कुछ, वहां पर व्यवस्था पूरी है, कोई काम नहीं है। तो वहां जो सुख है, जो वहां आनंद है, वहां के जो दृश्य हैं, वो ऐसे दृश्य हैं, उनसे कभी भी मन नहीं भरता, आत्मा खिंचती रहती है, प्रभु की भक्ति हमारे हृदय में फिर वहां भी चलती रहती है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति बिना आनंद आ नहीं सकता। हम वहां भी ईश्वर के गुणगान भी करते हैं, हमारा वह परिवार है, ऐसा ही परिवार होगा, ऐसा ही शरीर होगा, वो बच्चे वहां हमारे होंगे, हमारी जो संतान होगी, माता पिता होंगे, वो कभी मरेंगे नहीं। अब यहां ठीक है, यहां दुखों की कोई कमी नहीं है, पूरे दुख है, यहां हम खूब दुखी हैं। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबी नाकाल का भाई कुछ मुख में कुछ गोद। यहां छक्के दुखी हम यदि यहां हमारी मृत्यु ना हो और हमारे मात पिता या बेटा बेटी रिश्तेदार की मृत्यु ना हो, हम तीसरे ढीठ हो रहे हैं, यहां भी पड़े रहा कोई दिक्कत नहीं, पर यहां ना तो रह सकते, मृत्यु निश्चित। और ये मालूम नहीं या हो जा कब किसकी, बेटे की हो जा, भाई बेटी मर जा या माँ बाप की मृत्यु हो जाए, और ना जाने के बीमारी लाग जा, टांग कट जा, अंधा हो जा, ये दुख न्यारे। तो पुण्यात्मा वहां हमारा, अब यहां पर हम कितने दुखी हैं, और एक सेकंड का कोई विश्वास नहीं कि कब मृत्यु हो जा, किस कारण तो हो जा, घर बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जा, दो मिनट में जावे, और जिसको अपना समझ रहा था वो अपना है नहीं, वो रह गया सारा, और वहां ऊपर जाएगा, वहां कुछ भी को नहीं, क्योंकि यहां भक्ति की नहीं, आगे जब जाएगा धर्मराज के पास तो फिर ये ठग्यासा रह जाता है, बड़ा दुख पाता है। परमात्मा हमें यही याद दिलाना चाहते हैं कि उस सतलोक के अंदर हमें क्या सुख है, और यहां के दुखों से आप खूब परिचित हैं। ठीक है, हम अनजान हैं, सत्संग के अंदर वो दुख याद दिला दिए जाते हैं, वो ताजा हो जाते हैं और सच्चाई सामने आ जाती है, इसलिए प्रभु की इच्छा बढ़ जाती है। अभी तक हम स्वर्ग में जाना ही पसंद करते थे, जो भी कोई बात होती थी भाई वो स्वर्गवासी हो गया और हम स्वर्ग जाएंगे, ये भक्ति कर रहे हैं तो स्वर्ग जाएंगे, हमने स्वर्ग से आगे पता है को नहीं था। और स्वर्ग तो परमात्मा के तत्व ज्ञान से अब पता चला है कि ये तो, ये स्वर्ग तो एक ऐसी चीज है जैसे दो महीने या गर्मियों के दिनों में महीना 20 दिन शिमला कुन्नू मनाली चले गए, हरियाणा या पंजाब राजस्थान यूपी का कोई सेठ साहूकार, आम आदमी तो जा नहीं सकता जिसके पास हैंड टू माउथ है, जिनका गुजारा है मुश्किल से होता है, सेठ साहूकार जो होते हैं वो एक दो महीना 20-25 दिन जितना भी उचित समझते हैं वो उनकी पॉकेट अलाउ करती है, ऊपर हिली स्टेशन में चले जाते हैं और वहां होटल किराए पर कमरा लेते हैं, होटल में अपने जो पूंजी लेकर गए थे, जो अमाउंट ले गए थे वो पैसा, उसी से वहां कमरा भी किराए पर ले रखा है, आहार भी उसी से कर रहे हैं और घूमने फिरने का किराया भी उसी जेब से जा रहा है। हाँ वहां ठाठ है, काम कुछ को नहीं, मौज मस्ती मार के, और जब वह जेब में ले गए थे वो पैसा, वो जेब खत्म हो गया, जेब खर्च खत्म हो जाता है तो अपने आप अपने उसी मूल स्थान को लौटाते हैं। अब वो जेब में जो पैसे थे 20-30 हजार रुपये वो खत्म कराए, आके फिर अपने उस कर्म क्षेत्र में फिर धन जोड़न में लाग गए, वह जेब वहां खाली कराए, यहां करके फिर मेहनत करी, फिर अगले महीने गर्मियों में फिर 10-20 हजार रुपये जोड़े, फिर वहां चले गए। ऐसे ही यहां पुण्य इकट्ठे किए जाते हैं, पुण्यों से स्वर्ग प्राप्ति होती है, और जिसके जितने पुण्य होते हैं उतने ही समय के लिए वह स्वर्ग में निवास कर सकता है, उसके बाद वहां से, जैसे यहां से कंपल्सरी जाना है, इसी प्रकार स्वर्ग से भी कंपल्सरी बाहर हो जाना है जब उसका समय समाप्त हो जाएगा, और फिर नरक में भी कंपलसरी जाना है, क्योंकि यहां पुण्य गणे होते हैं, पाप ज्यादा होते हैं, पुण्य कम होते हैं, ये ऐसा काल ने ऐसा जाल फैला रखा है। जैसे पुण्यात्माओं किसान खेती करता है तो उस जमीन को कितनी बार संवारता है, पहले उसको हल से ट्रैक्टर से खूब संवारता है, उसके अंदर से सब खरपतवार काट कर निकाल देता है, और फिर उसमें बीज बीजता है, गेहूं कणक बोता है, उसके बाद फिर उसमें खाद डालता है, फिर सिंचाई करता है, फिर मेहनत करके फिर उसको काट कर निकाल कर जब अपने घर पर लाता है। अब गेहूं तैयार करने के लिए कितना समय भी लगाया, पैसा भी लगाना पड़ा, जब गेहूं बने प्राप्त हुए, और उसी खेत में अक्षेत्र में कुछ भी ना करो, चाहे हाथ भी ना लाओ उसके, और ये झाड़ झंखाड़ कांटेदार झाड़ियां ये अड़ंगा अपने आप इतना उग जाएगा गिनती नहीं हो। तो ऐसा ही एक क्षेत्र है हमारा, हम पुण्य करने के लिए तो हमें समय भी लगाना पड़ेगा और धन भी व्यय करना पड़ेगा, तब हमारे पुण्य होंगे। और पाप अपने आप डेली हो रहे हैं, पाप तो अपने आप हो रहे हैं। कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। सत्र ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम दे वो नित्या। जैसे हम पोचा मारे हैं फर्श के ऊपर, जैसे पोचा लगाते हैं, या पहले लीप्या करते थे, घर को लीपते थे, खाना बनाने से पहले चूल्हा आसपास के उसके लिपाई करते थे, स्वच्छ बनाते थे। खान पान में दमन प्राणी, खाना बनावा उसमें जीव मरे, खावे उसमें जीव मरे, श्वास ले उसमें जीव मरे। कहते इतने पाप होते हैं दिन में जिनकी गिनती नहीं, और पुण्य करने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है, पूरा संत ढूंढना पड़ता है, पूरे संत से नाम लेकर शास्त्र अनुकूल साधना करनी पड़ती है, तब जाकर के कोई पुण्य बनते हैं। तो इसलिए नरक में जाना कंपलसरी है, और बहुत लंबा समय नरक का होता है, स्वर्ग का समय बहुत कम होता है। उसके बाद फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में ये प्राणी कष्ट उठाता है, और सतलोक में ऐसा कुछ नहीं है। पुण्यात्माओं, हमारा थोड़ा सा पैसे का जुगाड़ हो जावे और ये पता चल जावे कि उस शहर में बहुत सुविधा है, बड़ा अच्छा स्वच्छ शहर है, और वहां बिजनेस भी बढ़िया हो जाएगा आपका, और वहां ड्यूटी भी ठीक, नौकरी भी मिल जाएगी, तो हम तुरंत त्याग देंगे उस स्थान को और वहां जाकर के बस जाएंगे। इसी प्रकार जब हमें ये ज्ञान होगा कि जहां हम रह रहे हैं ये तो हमें पता चल गया कैसा स्थान है, इसके बाद हम स्वर्ग पर आश्रित थे, स्वर्ग का पता लग गया, वो भी स्थाई स्थान नहीं है, उसमें भी चलो चलो रहेगी। उसके अब हमें पता चला कि सतलोक वो स्थान है जहां हम सदा रह सकते हैं, वहां कभी मृत्यु नहीं होगी, हमारा परिवार होगा और वहां भगवान के दर्शन सदा होया करेंगे। और वहां कितना सुख होगा। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अब आप देखते हो कोई टेंशन हो जाती है, किसी प्रकार की कोई ऐसी दुख में खबर सुन लेते हैं, या फिर किसी शत्रु के प्रति द्वेष हो जाता है, ये हमारे तकरीबन मना रहता है, और पूरे दिन में या महीने में या 10 दिन में कभी एकाध बार ऐसी लहर आती है कि उस समय हमें न तो कोई दुश्मन दिखाई देता है, दुश्मन से भी द्वेष नहीं रहता, कुछ सेकंड के लिए होती है, और ना ही कोई प्रयासा लगता, ऐसे आनंद की अंदर से मेहर की लहर आती है, सब पर रहम आता है, अपने से दिखाई देते हैं, इसको मेहर की लहर कहते हैं। उसके समाप्त होते ही फिर वही बीपी हाई, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, पारते ना बसाओ पर अंदर अंदर खूब जोश बना रहता है, दुख में दुखी होते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं वहां पर शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी, अचल जहां स्थाई स्थान मिलेगा हमें, और वो अविनाशी लोक है, वहां उसका नाश कभी नहीं होता। अब आपने कल देवी पुराण में सुना था कि भगवान विष्णु तो कह रहे हैं कि मैं तो केवल दुर्गा को ही भगवान मानता हूँ, इससे ऊपर कोई शक्ति देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है। देव माने भगवान, देवता कहो, देव कहो, परमात्मा अल्लाह गॉड कहो, ये भगवान की संज्ञा है। लेकिन ये देव घने हो गए इसलिए उस महादेव कहा जाता है। महादेव, ये महादेव कौन है? शंकर भगवान को महादेव कहते हैं? नहीं, वो परमेश्वर की तरफ संकेत होता है। वैसे तो नाम ये भी महादेव कहलाते हैं, क्यों? अन्य देवताओं से ये थोड़े से ऊपर हैं, से आई उनसे ताकत और सतीथी में ये उच्च हैं। वास्तव महादेव परमात्मा ही होता है। अब दुर्गा क्या कहती है वो भी आपको कल पढ़ा था, आज फिर पढ़ा है, क्योंकि प्रसंग वश प्रत्येक सदग्रंथ का वो ज्ञान फिर से हमने रिवाइज करना पड़ता है ताकि तत्व ज्ञान को हम अच्छी तरह समझ सकें। देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये देखिएगा, ये पहला स्कंध, और प्रश्न नंबर 28 पे, और इसका अध्याय नंबर 4 है, क्योंकि यहां अध्याय नंबर 3 समाप्त हो जाता है, 1-3 का विवरण, और चौथा शुरू होता है 27 पे, और 28 पे हम नीचे इसको ज्यादा ना पढ़ेंगे। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो मुझसे पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देव आदि देव भगवान जगत के स्वामी, लक्ष्मी जी उनके सेवा में उपस्थित रहती है, आदि आदि। उसकी चार भुजाएं हैं, वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह है, वे चार तरातर जगत के आश्रयदाता है, आदि आदि। उनकी भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिताजी ने ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष से जगत के स्वामी हो, सारे ये सब कुछ बताया, आश्चर्य हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हो। अब यहां लेंगे हम 28 पे 29 पे, देखिएगा, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। विष्णु जी कह रहे हैं, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा का ध्यान करूं, इसी की पूजा करता हूं, और मेरी जानकारी में इस दुर्गा से बड़ा कोई भगवान नहीं है। अब दुर्गा जी कहती है इसके 562 पृष्ठ पे, दुर्गा जी कहती है, ये देखिएगा, सातवां स्कंध अध्याय 36 हम थोड़ा सा सुनाएंगे, क्योंकि ये कल दो बार सुना लिया है। 562 से प्रकरण शुरू होता है, लेकिन हम 563 से ही लेंगे, थोड़ा सा लेंगे। यहां देवी कह रही है, श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, ये सारा कुछ बताती हुई यहां आ जाती है। ये उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है, ये सारा कुछ लिखा है। इस आत्मा का ओम के जाप का से साथ ध्यान करो, उससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और जो संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वह यह आत्मा सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब ये क्या कहना चाहते हैं दास, देवी भगवान विष्णु तक है, देवी से ऊपर कोई भगवान नहीं, और दुर्गा कह रही है कि और परमात्मा है वो ऊपर लोक में रहता है, कहां ब्रह्म लोक में, ब्रह्म लोक में रहता है। अपवित्र गीता जी में लिखा है 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कि ये ब्रह्म लोक तक सभी नाशवान है, अर्थात जो यहां का अंतिम भगवान ब्रह्म है वो ब्रह्म लोक में रहता है, वो भी नाशवान है, वहां गए हुए भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए ये अविनाशी नहीं है। अब देखिए पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, अध्याय नंबर 8 का 16 आपको दिखाते हैं। अध्याय नंबर 8 और मंत्र नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत यानी ब्रह्म लोक तक सब लोग पुनर्वर्ती में हैं, पुनर्वर्ती हैं। पुनर्वर्ती का अर्थ है दोबारा जन्म मृत्यु होता है, सब का ये नष्ट होते हैं। अब हमने देखो कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं या कोई भी पढ़ाई उद्देश्य या कोई ट्रेनिंग बच्चा करने की चेष्टा करता है तो पहले उसके मेरिट एंड डीमेरिट से, उसके गुण अवगुणों से परिचित हो जाता है कि कितना इससे मुझे लाभ मिलेगा, किस कैसी पोस्ट होगी, उसमें कैसी व्यवस्था होगी, तब वो बच्चा उस ट्रेनिंग को करता है। तो हम स्टूडेंट हो आप विद्यार्थी हैं, परमात्मा के पाने वाले विद्यालय में आपको प्रवेश हो गया है, आप पढ़ रहे हैं। तो हमने सबसे जिनको मानव शरीर प्राप्त है वो सभी परमात्मा पाने योग्य अंक प्राप्त कर चुके हैं, वो दूसरी बात है। कोई 33% से पास हो रहा है, कोई 75% से, कोई मेरिट ले रहा है, पास सारे हैं और प्रवेश सबको प्राप्त है। तो आपकी ड्रेस अलग होगी अन्य प्राणियों से, आपका शरीर आपका पोशाक अलग है, तो आप सभी परमात्मा पाने के अधिकारी हो, आप स्टूडेंट विद्यार्थी हो सब। लेकिन जो नालायक बच्चे होते हैं वो स्कूल में ना जाकर बाहर घूमते रहते हैं, ऐसे ही कितने वर्कशॉप पर चढ़ के बेर खाए जा, कुटते पढ़ाया साझ ने घर क्या पे पट्टे, स्कूल में जाओ तो मास्टर गणे, तो वह फिर पढ़ते हैं नहीं, फिर वो दुखी होते हैं, मजदूरी करते हैं, दुर्गति होती है। और जो बच्चे पढ़ जाते हैं, शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, वो सुखी हो जाते हैं। तो जो बच्चे स्टूडेंट हैं वो पढ़ रहे हैं, वो फिर जैसे उच्च क्लासेज में जाते हैं, हाई क्लासेज में, वहां जाकर के फिर वो निर्णय करते हैं कि कौन सी ट्रेनिंग करूं, कौन सा कोर्स करूं जिससे मुझे लाभ हो। तो पुण्यात्माओं, ये सभी जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं ये विद्यार्थी हैं, और जो विद्यार्थी अर्थात जो मनुष्य मानव शरीरधारी स्त्री या पुरुष परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे वो नालायक स्टूडेंट है। और वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, वो अपने उद्देश्य से वंचित रह जाएंगे, वो बाद में पछताएंगे। कैसे पछताएंगे, जैसे एक व्यक्ति सड़क के ऊपर मट्टी डाल रहा था, मजदूरी कर रहा था, और उसी महकमे का एक्सियन आ गया जीप में बैठ के, और वो सभी अधिकारी कर्मचारी जो थे वो सब अलर्ट थे, वो अपना आगे चला गया। तब वो मजदूरी कर रहा था ना, वो व्यक्ति ने बोला कि यो एक्सियन है ना, यो मेरा सहपाठी था, हम इकट्ठे पढ़ा करते, मेरे भाग फूट गए, मैं पढ़ा को नहीं है, और ये पढ़ गया, देखा आज सारे ठाठ हो गए, आज मेरे बच्चे तो यही रेत में पड़े हैं, और किसी के पास कपड़ा है, किसी के पास नहीं है, मजदूरी करता हूं, मुश्किल से रोटी मिलती है। अब रो रहा उस समय को मैं भी पढ़ जाता था, मैं भी ये ठाठ प्राप्त कर लेता। तो पुण्यात्माओं, अब ये समय है, अब ये समय है, इसमें जो पछतावेंगे, अब जो इसमें पीछे रह जाएंगे वो तो पछतावेंगे। देखो विद्यार्थी हैं, वो कष्ट भी उठाते हैं, स्कूल में सुबह तैयार होते हैं, अपना होमवर्क भी करते हैं, फिर क्लास वर्क भी करते हैं, और वहां अध्यापकों की डांट भी खाते हैं, नीचे फर्श पर बैठते हैं, या कोई स्टूल वगैरह जैसा मिल गया उस पर अपना, गर्मी सर्दी में वो अवश्य स्कूल पहुंचते हैं, विद्यालय में जाते हैं, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, और वहां तो उस कष्ट को एक बार वो मेहनत करके 5, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष जैसे भी उनकी सटड्डी है तो अपना काम पूरा कर जाते हैं, तो सदा के लिए सुखी हो जाते हैं अपने जीवन में। इसी प्रकार ये जो आपको आने और जाने में तो कष्ट लालो, बाकी यहां तक कष्ट है ही नहीं, यहां तो परमात्मा की ऐसी व्यवस्था उस अपने बच्चों के लिए पहले ही करवा देता है, क्योंकि आप पुण्य आत्मा है और भगवान अपने प्यारी आत्माओं को हाथों पर रखता है। तो अब ये जो मेहनत आप कर जाओगे सदा के लिए सुखी हो जाओगे, और जिनके पास यहां आने का समय नहीं है, बकवादाम लागे रहे सारा दिन, गोटी लाई की तो बकवाद, घड़ी की तो ताश खेले, की तो राजनीति के गप्पे मारे, तो वह बाद में रोएंगे ऊपर ना मुंह करके कुत्ते बनकर। परमात्मा क्या कहते हैं, मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा जसरे, मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा जसरे। अब क्या बताना चाहते हैं कि मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा जसरे। भाई सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीर, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीर, एक पलक में राज विराजी वो जम के पड़े जंजीर, मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। अब देखो रावण के कितने ठाट थे, रावण एक नेक आत्मा का आदमी था, परमात्मा को चाहने वाला था। अब उससे पुण्य आत्मा को मार्गदर्शक ठीक ना मिले, और मार्गदर्शक ठीक ना मिलने से उसको जो गुट्टी पिला दी के भगवान, जैसे उनके गुरुदेव ने उसको क्या बता दिया कि भगवान शिव से बड़ा कोई परमात्मा नहीं, और भगवान शिव की साधना करने से तू धनी हो जाएगा, तुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, कितना धन ले लिए ऐसे हो जाएगा, तुझे राज्य मिल जाएगा, ठाठ करेगा। अब उसने जैसा भी बताया कि उसके गुरु ने बता दिया कि वेदों में भगवान महाशिव सदाशिव, ये शिव ही सब कुछ है, इसकी पूजा करके और आप स्वर्ग प्राप्ति कर सकते हो, राज्य प्राप्ति कर सकते हो, सिद्धियां हो जाएंगी, आकाश में उड़ सकते हो, ऐसी सिद्धियां ये दे देते। तो ये खिलौने इन भगवानों के पास हैं जो काल के जाल में फंसाए रखने के हैं। अब उस रावण ने उस तमोगुण भगवान शिव की भक्ति की, और ऐसी भक्ति की कि आप तो सात जन्म नहीं कर सकते। उस शिव जी की भक्ति कैसी भक्ति की कि खड़ा होकर के तपस्याएं की, जब नहीं प्रसन्न होता दिखा तो यहां से तलवार मार के और अपना शीश चढ़ा दिया। ऐसा फिर परमात्मा शिव जी ने फिर उसको वापस दे दिया। फिर 10 बार उसने ऐसे किया तो कहते हैं ऐसी साधना की और उसके प्रतिफल में उसने क्या प्राप्त किया, सारे सोने की लंका बना ली, आकाश में उड़ जाने की सिद्धि होगी और खूब बकवाद करने लग गया। अब जब ही जीव के पास यहां ये काल लोक का सुख हो जाता है, ये कोरी कुबद करता है, तो क्या बताते हैं, अब उस प्यारी आत्मा ने साधना भी की, तमोगुण भगवान की और राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। दुनिया उसके नाम से भी नफरत करती है। तो परमात्मा इसलिए कहते हैं मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। अब उसने अपनी महिमा बनानी चाहिए थी कि मैं धनी हो जाऊंगा, आकाश में उड़ जाऊंगा, और कोई यार इतने सेना बन गई, इतने उसके योद्धा थे और रावण नावण हो रही थी उसके राज में, तो राजा की महिमा होगी होगी। कहते वो यश प्राप्ति के लिए उसने जो कुछ भी किया वो यश नहीं रहा, वो खुद भी ना रहा, अन्ना व सोने की लंका उसके पास रही, वो विभीषण को दे दी गई। विभीषण को क्यों मिली, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा का साधक था और उसने इसे डले डोए नहीं, क्योंकि ये साधना नहीं की, उसने केवल पूर्ण परमात्मा मुनिंदर रूप में आए हुए प्रभु से उपदेश लेकर के सच साधना की और उस सच साधना से उसको वो राज भी मिला जिसको रावण ने रखा तमोगुणी भगवान की पूजा करके। इसलिए कबीर परमेश्वर कहते हैं जय तुझे राजपाठ को चाहिए तो मेरा इधर ले ध्यान, तने धन भी चाहिए वो भी मैं दूंगा, और तने राज्य चाहिए नालायक को भी मैं दे सकता हूं और सहज में दे दूंगा, इस तरह की कठिन तप करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये राज्य और यहां का धन तेरा शत्रु होगा, ये पहले बता दिया जाता है। अब तू मांग ले, मोक्ष मांगना चाहता है या यहां के खिलौने मांगना चाहता, मैं सारे दे दूंगा सबका सब। ये भी मेरे से ही मांगते हैं, जैसे भगवान विष्णु शिव भी साधना करता है किसी की। तो कहते हैं फिर यो काल भी ज्योति निरंजन भी साधना करता उस कबीर परमेश्वर से मांग करके अपने किस ब्रह्मंडों को चला रहा है।